यशा यूसुफ को मैं यूहन्नास, नहीं करते कुछ ना मानो, तुम अल्लाह के नहीं बनना चाहते। अल्लाह मालिक है आसमानो जमीन का और सब काम वही करता है, तो अगर तुम नहीं उसके करते तो वो क्या कर सकता है। यहां से पीछे से पढ़ूंगी। हाँ, अल्लाह ही मालिक है इन सब चीजों का जो आसमानों में है और जमीन में है, और कारसाजी के लिए बस वही काफी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। सोचिए, 3 सेकंड तक सोचिए, क्या अल्लाह की ताकत है कि मुझे हटा के दूसरों को ले आए। 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, पीछे वाली आयतों से चल रहा है सारा मामला। एक बीवी जाती है, उसकी जगह दूसरी आ जाती है। आप एक नेक शख्स की कदर नहीं करते, अल्लाह उसको आपसे अच्छी बीवी दे देता है। और इसी तरह ऑपोजिट मामला भी है। तो मैं और आप अल्लाह की मजबूरी नहीं है, सिंपल सी बात है। जब कोई नेकी ना करने को दिल करे तो खुद को ये कहें कि अल्लाह का क्या बिगड़ता है, नहीं तो ना सही, तुम रूठे हम झूठे, ना करो तो नहीं, करती तो ना करो। यही बात आगे हम सूरत माईदा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने इतना क्लियर कट मैसेज दे दिया, आते हो तो शौक से आओ, रोते हुए ना आया करो, दुखी हो के ना मेरे सामने बैठा करो, और तड़पते और एहसान जतलाते और गिनते बालिश्तों के साथ अपनी नेकियां करते हो तो तुम अपने पास रखो। अल्लाह को खुले दिल से नेकियां पसंद है। अल्लाह के साथ खुला मामला रखें, अल्लाह आपको खुली जन्नत भी देगा और दुनिया भी आपके ऊपर कुशादा कर देगा। फरमाया, जो रह गई बात इसके पीछे कि मन कान युरीद सवाब दुनिया, जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो, यानी जिसको चाहिए दुनिया। आप देखिए, जो भी रीजंस है बीच में दुनिया ही होगी ना ना करने की। अगर तो फरमाया, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखरत भी है, और अल्लाह ताला समीउ बसीर है। कोई बादशाह ऐलान करे, क्या हो मेरे पास और जो मांगो तुम्हें दूंगा। एक तरफ उसने डायमंड्स रखे हों और दूसरी तरफ उसने जरकोन रखे हों, हम क्या लेंगे? डायमंड्स लेंगे ना। कितना ना समझ है जो जरकोन पकड़ ले और डायमंड छोड़ दे। दुनिया क्या है? जरकोन है, चमकती तो है, ज़ुय्यिना लिन्नास, लेकिन असल इसकी नुकसान है। हदीस में आता कि अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की इस अहमियत होती तो अल्लाह तआला किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट ना देता। कुरान क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो हीरे और जरकोन का फर्क बताता है। जब ये आंखों पे ऐनक लगती है ना, फिर पता चलता है कि किया तूने मताए गुरूर का सौदा। जिस दुनिया को बनाने में लगे रहे, उस दुनिया को जब छीनने, जब उस दुनिया से जाने का वक्त आता है, फिर इंसान रोता है। 15 साल, 16 साल की उम्र में दुनिया से बच्चे जा रहे हैं, 18 साल के जा रहे हैं, 26 साल के बच्चे जा रहे हैं, 28 साल के जा रहे हैं, क्या लेकर के साथ? अमाल की पोटली। तो मत सोचिए कि हम बहुत जिएंगे, शैतान के जो धोखे पीछे पड़े उसमें ये भी धोखा है, खूब जियो। अभी गुना करो, नेकी देखे, अभी यू आर स्वीट टीन, टीन एज, अभी क्या, अभी तौबा करेंगे, शादी होले फिर तौबा करेंगे, अच्छा जरा हज कर लूं फिर तौबा करूंगी। अल्लाह कहते, तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने का वक्त कब आ जाए? तुम पता नहीं कहीं जा सको ना जाओ और मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो। देखिए, अगर ये आयतें हम नॉन मुस्लिम्स के साथ शेयर करें तो कभी वो हमारे दीन को बुरा ना कहे, सच्ची जो बात है। बार बार, और अगली सूरत में तो बहुत कसरत से आएगा, अदल करो, इंसाफ करो, बी जस्टिस, बी वाइज, किसी की तरफ ना झुको। तो अगर आज हम मुसलमानों ने कुरान के ये हुक्म सुने होते और माने होते तो आज लोग कम अज कम इस्लाम को तो बुरा ना कहते हमारी वजह से। अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जात खुद तुम्हारी अपनी जात या तुम्हारे वालदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़े, यानी मार भाभी का झगड़ा है और आपको साफ समझ आ रहा है कि कसूर आपकी माँ का है, तो डोंट टेक साइड ऑफ योर मॉम, यू नीड टू टेक द साइड ऑफ योर भाभी। अम्मी भाभी सच में है, बदतमीजी नहीं करनी, रूट नहीं होना, लेकिन हक वाले का साथ दें। ससुराल और मैके का मामला है तो जिसकी गलती है उसको देखिए। बाज दफा हम किसी की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा अपना है। अल्लाह ताला कहते हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप को या तुम्हें इसका नुकसान हो और तुम्हारे रिश्तेदारों को, फिर भी यही करो कि हक का साथ दो। फ्री के मामला, ख्वा मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा इनका खैर ख्वाह है, बस अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बास ना रहो। इसको हाईलाइट कीजिएगा, फला तत्तबिउल हवा अंतादिलो। ये सबसे बड़ा बुत है जो इंसाफ नहीं करवाता, ख्वाहिश नफ्स, लस्ट, अपनी जात का बड़ा होना, ख्वाहिशात। अल्लाह कहते हैं, अपने नफ्स के इंक्लाइनेशन को ना देखो बल्कि अदल को देखो। और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। 3 सेकंड तक सोचे, जो मैं करती हूं क्या अल्लाह को उसकी खबर है, और अल्लाह मुझे उस सब का बदला देगा। अल्लाह तो मेरे हाल पे रहम करते। इसके बाद अब सूरत का वो एंगल शुरू हो रहा है कि जहां दो रुखे लोगों की बातें हैं, मुनाफिकीन के तस्करे, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہوا؟ ایمان لا چکے ہو پھر بھی ایمان لاؤ. یہ قرآن کا بڑا یونیک نقطہ ہے. ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی. ایسی جیسے کوئی سو رہا ہوتا آپ کے, او سونے والوں سو جاؤ, او کھانے والوں کھا لو, بات نہیں بنتی نا. تو ہم تو کہتے ہیں ایمان لا چکے ہیں, اللہ کہتے پھر لو. کون سا لفظی ایمان لا چکے ہو, اب شعوری لے کر آؤ. تمہاری زبان نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اب اپنے جسم سے اس ایمان کے تقاضے پورے کرو. خاندانی ایمان کو چھوڑ کر اللہ کے حکم والا ایمان لے کر آؤ. پھر کیا ہوگا, کس پر لانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر, اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. اور یاد رکھیے یہ چینج سب کو اپنے اندر فیل ہوتی ہے پہلی دفعہ قرآن پڑھ کے. ایک وہ ایمان تھا جو بچپن سے لے کے آج تک تھا, جو ہمارے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں اذان دی گئی تھی. وہ ایمان آج تک ہمیں لڑکا پڑکا رہا تھا. ماں باپ کے ڈر سے نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے, کبھی معاشرے کے ڈر سے کچھ گناہ بھی چھوڑ دیتے تھے. اب ایک دوسرا ایمان آپ کی میری زندگی میں آئے گا, یہ شعوری ایمان ہے. یہ ہے اصل ایمان مطلوب, کہ جس میں کوئی کہتا نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو, جس میں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے کسی برائی سے, آپ کو خود بخود لا جاتی ہے, شرم آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا, جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور روز آخرت سے کفر کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. ہائی لائٹ کریے گا اس آیت کو. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے, کفر اور اسلام کی آنکھ مچولی. دیکھیے لائٹ جل رہی ہے پھر بند ہو, جلے پھر بجھے, جلے پھر بجھے, کیسا ہوگا؟ لائٹ فیوز ہو جائے گی نا. اسی طرح جب کوئی مومن ایمان پہ آئے پھر زندگی میں کفریہ کام, ناشکری کے کام, ایک اچھا کام ایک برا کام, ایک اچھا کام ایک برا کام, تو اس کا نتیجہ نفاق کی صورت میں آتا ہے. کفر کیا ہے؟ ڈینائل. اور ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اس کو مان لینا. تو جب آپ اللہ کے ایک حکم کو مانیں پھر چھوڑیں, ایک کو مانیں پھر چھوڑیں, کیا ہوگا؟ فیوز ہو جاتا ہے ایمان کا بلب. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, اور رات کو جب اپنے بستر پہ سوئے گا تو کافر ہو کر سوئے گا, پھر اگلے دن مومن پھر کافر. پتہ نہیں راتوں کو کیا دیکھتا ہے, کیا سنتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا اس کے گناہ ہیں رات کے جس کو اللہ نے کے نبی نے اس طرح پیش کیا. تو دعا کیجئے کہ کفر اور ایمان کی آنکھ مچولی ختم ہو اور اللہ میں سیدھا سیدھا ایمان والا بنا دے. ایسے لوگوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. یہ بھی ایک اللہ کی سزا ہے. جب بھی بندہ یوز ٹو ہو کے گناہ کرتا ہے, جب اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا ہے, لیگلائز کرتا ہے, تو اللہ پھر اسے ہدایت چھین لیتا ہے. بندہ گناہ کرے پھر شرمندہ ہو روئے, اللہ معاف کرے گا. اسی صورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں, انما التوبہ علی الذین, وہ لوگ جن کی توبہ ہوگی قبول. وہ کون ہے؟ کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے, بسو ان بھی جہالت, پھر توبہ کر لیتے ہیں, ثم یتوبون من قریب, اللہ معاف کر دے گا. لیکن جانتے بوجھتے پلان قسم کے گناہ مومن نہیں کر سکتا. چلیے 3 سیکنڈ تک سوچتے ہیں, کوئی ایسی پلاننگ ہے میری آگے کچھ مہینے بعد, جیسی رمضان کے اینڈ ہونے کے بعد, کہ جو گناہ کی کوئی دعوت کی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی خود توفیق عطا فرمائے. اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی نوید دیتے ہیں, کہ جو نام کے مسلمان کام کے کافر, کبھی مسلمان کبھی کافر, کا بشر المنافقین بی ان لہم عذاب الیما. اور خوشخبری سنا دو ان کو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں, جو منافق ہیں یعنی, اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, ان کو یہ خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. اور آپ نوٹ کریں, اب اگلا موضوع جو ساتھ ہی چل رہا ہے نا, وہ کافروں سے دوستی ہیں. اکثر ایمان والوں میں نفاق کفر سے مروبیت سے آتا ہے. کافر طریقے, کفرانہ راستے, کوئی ایسے دوستیاں اور ان کی محفلیں, ان کی پارٹیاں. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محفل ہو تو شراب نہ چلے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیگریگیشن ہو اور پارٹی ہو؟ اس طرح کی چیزیں جو کافروں کو اچھی نہیں لگتی, جب مسلمان اس کو ان کی کرٹسی میں اپنے اندر لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے ہی وائرس پیدا ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر ہے. اور عموماً لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پریسٹیج میٹر بنا کر. ایک جگہ تھی تو وہاں تھا, بہت اچھا ہال, سب کچھ تھا, لیکن صرف اتنی سی ان کی ریکویسٹ تھی کہ بیچ میں ایک پارٹیشن کر دیں, کیونکہ خواتین میں بہت ساری بفردہ ہیں, मर्द एक तरफ हो जाए, औरतें, तो उन्होंने कहा वी कैन डू बिकॉज इट्स प्रेस्टीज मैटर, हमारे हॉल की लुक खराब होगी, फिर दुल्हन पूरी दूर से नहीं दिखेगी। तो जब ये ऐसी बातें कि आप चाहते हैं इज्जत मिले, और लोग वाह क्या शादी की, क्या बिग हॉल था, क्या मिक्स गैदरिंग थी, क्या लग रहा था, तो अल्लाह ताला कहते हैं यब तगून इंद हुमुल इज्जत, क्या ये उनसे इज्जत चाहते हैं, इज्जत के लिए सब कुछ करते हैं, इज इट देयर प्रेस्टीज मैटर। तो इनको बता दो कि फाइनल इज्जत अल्लाह जमिया, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह इस किताब में तुमको पहले से हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के खिलाफ कुफर बोला जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां ना बैठो जब तक के लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी इन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने लगे। कितनी आसान आयत है समझने में, कोई है इसमें मुश्किल बात? ऐसी महफिलें, ऐसी दावतें, पार्टियां, गैदरिंग्स जहां अल्लाह और उसके इस रसूलों का, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां मत बैठो क्योंकि तुम वैसे ही हो जाओगे। देखिए यहां से नुक्ता आगाज होता है, किसी मुसलमान के कुफर में जाने का डायवर्शन पॉइंट जो है ना, वो यही होता है कि ऐसी जगहों पे जाना, बात मजबूरियों के नाम पे जाते हैं, क्या करें, तोहफा देने जा रहे हैं, गिफ्ट दे आए, अच्छा क्या करें, बच्चे की शादी है, ससुराल की शादी है, बेटी का ससुराल है, दूसरों को खुश करते करते इंसान अल्लाह को नाराज कर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं जब किसी चीज को गलत देखते हो, यहां नोट कीजिए, सिर्फ उस महफिल को छोड़ना है, उन लोगों को नहीं छोड़ना, रिश्ते नहीं काटने, दोस्तियां नहीं छोड़नी, लेकिन उनकी गलत चीजों को छोड़ना है। क्या वहां खड़े होकर तकरीर करनी है, बहस करनी है? नहीं, पहले से बता दीजिए, पहले से अपना किबला सही कर लें, लोग कभी भी आपको मजबूर नहीं करेंगे। और याद रखिए ये खुशफहमी है हमारी कि हमारे बगैर कोई फंक्शन नहीं होता, हर जगह जब तक पहुंचूंगी नहीं मेरे काम नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब के लिए ये बातें आसान कर दे, समझनी और अमल करनी। फरमाया अल्लज़ीन यतरब्बसून बिकुम, ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि उन किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो इनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे? फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया, बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला कयामत के रोज करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की कोई सबील नहीं रखी। यकीन करें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आयते हैं, अगर अभी जल्दी में पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा ना, तो इस पूरे रुकू को तदब्बुर के रख में घर जाके एक दफा इसके तर्जमे को बस लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लें, आपको बहुत बातों का जवाब मिलेगा। क्योंकि मैं इन बातों को अपने लफ्जों में दोहराऊंगी ना, तो आपको भी ये कुरान की बातें नहीं लगेंगी। लेकिन ये है उम्मते वसत का आज एक मसला, हम अल्लाह को भी खुश करना चाहते हैं लेकिन हम वो चीजें नहीं छोड़ पाते जिनसे हमारे ख्याल में इस दुनिया में हम तरक्की कर रहे हैं, हालांकि तरक्की अल्लाह की बात को मानने वालों में। फरमाया इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इनको धोखे में डाल रखा है। जब नमाज के लिए उठते हैं तो कसम साते हुए यानी सुस्ती के मारे महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। जब रातें इस किस्म की महफिलों की नजर हो जाती है ना, लेट नाइट फंक्शंस, जहां वो सब कुछ हो रहा है जो अल्लाह को नहीं पसंद, तो उसका सबसे बड़ा फैक्ट फजर की नमाज पे कामों को साला, आंखें भी नहीं खुलती, उठ जाओ। बात है ये भी बड़ा जिहाद है, कहां एक इंसान उठे ही ना। और नमाज में ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, याद ही नहीं है नमाज में अल्लाह को, क्या याद किए, वो तो आंखें बंद करके दो सजदे दिए ताकि काफिर ना बन जाए, और फिर बंद आंखों के साथ किए हुए वजू से नमाज पढ़ी हुई जाके बिस्तर पे सो गए। याद रखिए जितना हमारी जिंदगी में फन और एंटरटेनमेंट और ग्लैमरस थिंग्स बढ़ती हैं, उतना ही नमाजें बेकैफ हो जाती हैं। नमाज का एक हुसन है और वो उसको मिलता है जिसका दिल खाली होता है, और जब हम दिल दिमाग को हर वक्त, आज वीकेंड इधर, ये वीकेंड इनके घर, आज उधर दावत, आज उधर पार्टी, यानी टू मच सोशलाइजिंग बाज दफा ईमान से इंसान को दूसरी तरफ ले जाती है। अल्लाह के नबी रमजान में सोशलाइजिंग खत्म कर देते थे, कम बोलते थे, कम खाते थे, कम सुनते थे, कम सोते थे और लोगों से कम मिलते थे। वजह क्या है कि जब लोगों से मिलेंगे एक तो गलत बातें होने का डर है, फिर दूसरी बात है टाइम कितना वेस्ट होता है, फिर वो सारी रीलें घर आके चलती हैं, ये देखा वो सुना, तो इसलिए अपने आप को खतरों में डालना इंसान के अपने ही नुकसान के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ये दो कश्तियों के सवार हैं, कैसे, कुफर और ईमान के बीच में डावाडोल हैं, ना पूरे इनकी तरफ है ना पूरे उसकी तरफ। जिस अल्लाह ने भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। देखिए ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। दीन वालों में आएंगे तो दीन को अच्छा समझेंगे, फिर दुनिया की कोई ऐसी, और दुनिया नहीं बल्कि गुनाह की कोई चीज मिली तो वो भी नहीं छोड़नी। अब हुआ क्या, ना इधर ना उधर, ना दुनिया वाले इनको अब कबूल कर रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह वाले बन गए, और ना दीन वाले इनको पसंद करते हैं कि अच्छा जी ये किधर गए। यानी मुनाफिक की जान अटकी होती है इधर का उधर। आप देखिए ना, दो कश्तियों में किसी के पांव रखे तो खौफ क्या होगा, गिर जाऊंगा। एक कश्ती इधर एक उधर, एक कश्ती दीन की है एक दुनिया की है। आप उन दोनों में रहेंगे तो नतीजा क्या, दीन वाले तो अपने रुख पे निकल जाएंगे और दुनिया वाले ऐसी रुख पे जाएंगे जहां आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, आप ठस करके उस गुमराही के समंदर में गिर जाएंगे। इसलिए टाइम लगता है। मैं नहीं कहती कि ये सारे काम एक दिन में हल हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। आई डेयर यू एटीट्यूड। इस तरह से लोग बाज दफा निफाक में लम्हा बलम्हा दाखिल होते हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता। जैसे बीमारी कभी कई रुख लेकर आखिरी स्टेज में जाहिर होती है ना, खासतौर पे कैंसर, पता भी नहीं चलता पहले, लेकिन एंड पे जब निकलती तो खत्म नहीं होती। इसी तरह मुनाफकत भी डिफरेंट तरह से निकलती है इधर से उधर। और आप ये सारी आयतें जो भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने गौर से सुना इसको तो आपको वजह समझ आ गई। इसका नुकता आगाज कुफर से दोस्ती है। कुफर से मुराद काफिर नहीं है, फिर मेरे एक एक लफ्ज को सोचा करें, काफिर नहीं कहा, कुफर से दोस्ती। काफिर से दोस्ती बहुत अच्छी है, आप उसको इस्लाम देना चाहते हैं, आप सब जाके नॉन मुस्लिम से दोस्ती करें, दे शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कुफर से नहीं करनी। आप किसी मजहब की सिस्टर से दोस्ती करें, यू कैन डू, बट उनके गलत तरीके से दोस्ती नहीं करनी। इधर से आगाज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा फैल जाता है कि फिर हम उन जैसे काम करते हैं, क्योंकि इंसान हदीस में आता है, अलमरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला हमें चार तरीके सिखाते हैं निफाक से निकलने के। मुनाफकत से अपग्रेड होना चाहते हो तो क्या करो, पहले तो अल्लाह ने यह आयत कहकर हम सबको ही डरा दिया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफली मिनन नार, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे गहरे दर्जे में होंगे। आपको पता है कि जन्नत ऊपर है तो जहन्नम नीचे है। जैसे किसी भी तंदूर को सोचे, जितना डीप डाउन जाएंगे ना उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऐसे ही है ना। तो काफिर भी कहीं ऊपर ही होंगे क्योंकि वो तो ओपनली कह दिया उन्होंने, हमसे कोई उम्मीद ना रखना, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। मुनाफिक कौन होता है जो उम्मीदें दिलाता है अल्लाह को, आई एम मुस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1000 दफा तस्बीह पे पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, कुछ भी पढ़े लेकिन वो अपनी जोम में कुछ पढ़ ही रहा होता है। वो बार बार पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बाना कहीं नहीं कुंतु मिन ज़ालिम, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बाना कहीं नहीं कुंतु मिन, फिर भी काम वही कर रहा होता है जिसमें उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पे आता है ना वो मुनाफिक है। और आपने नोट किया कि सूरह बकरा के आगाज में ये मौजू आया था लेकिन वहां लफ्ज मुनाफिक नहीं आया था, अब सूरह निसा में लफ्ज मुनाफिक के साथ नाम आया। और मुनाफिक नफक से, नफक कहते हैं टनल को, टनल के एक तरफ से आप जाते हैं ना तो आपको बाहर दूसरी तरफ से निकलना होता है, अब उसमें टर्न नहीं ले सकते। मुनाफिक इस्लाम के दरवाजे से दाखिल होता है और कुफर के दरवाजे से निकल जाता है। और हाइड करने के लिए होती है टनल, जान बचाने के लिए चूहिया एक टनल में घुसती है, नाफिका उस चूहिया को कहते हैं जो एक जमीन में टनल बनाती है, किसी दुश्मन को देखती है तो उसमें घुस जाती है। वो सोचता है अच्छा अभी बाहर निकलेगी तो मैं इसको पकड़ूंगा, लेकिन वो टनल के दूसरे हिस्से से निकल चुकी होती है। यही निफाक है। जहां दीन कोई तकाजा करे, कोई कुर्बानी, कोई हिजरत, कोई अमल, तो कहते हैं बस छुप जाओ, पीछे हो जाओ, खैर से जाओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो। देखिए अल्लाह का चैलेंज है, मेरे दुश्मनों से दोस्ती करके मुझे तुम चांस दे रहे हो, या मुझे कहना चाहिए कि अथॉरिटी लेटर दे रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं। यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को इनका मददगार ना पाओगे, अलबत्ता जो इनमें से तौबा कर ले। ये है पहला मरहला, जो इनमें से, ईमान तो साथ ही है ना, आमनु ताबु वसलहु, ये तीन दर्जे आप देखेंगे। हाँ, इनमें से जो तौबा कर ले, अपने तर्ज अमल की इसलाह कर ले, और साथ ही साथ वा तसमु बिल्ला, अल्लाह को मजबूती से थाम ले, ये लाजिम है। और अल्लाह को कैसे थामेंगे, वा तसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया से, वही लफ्ज है इधर भी, अल्लाह को थामना है तो हाथ पकड़ते हैं ना, तो अल्लाह ने किधर से अपना हाथ फैलाया हुआ जमीन पे, इस कुरान की जरूरत में। हब्लुल्लाहिल ममदूद, आसमान से वो अल्लाह ने रस्सी फेंकी हुई है जिसको पकड़ लोगे, अल्लाह ताला का दामन थाम लोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देगा। और फरमाया उसके बाद वखलसू दीनहुम, अपने दीन को खालिस कर लो। तीन के अंदर से सब खोट खपट निकाल दो, इखलास ले आओ, क्लीन एंड क्लियर, डीप डाउन क्लीनिंग कर लो। देखिए बहुत तरीके होते हैं ना क्लीनिंग के, एक सर्जरी क्लीनिंग होती है, लेकिन उसके अंदर भी कपड़ों के अंदर से अगर आपने गंदगी निकालनी है तो कभी आप ब्लीच डालते हैं, कभी आप उसमें कोई और चीजें डालते हैं कि अंदर का मैल खुचैल निकले, दिल के अंदर के तारों में से कुफर की मोहब्बतें निकल जाएं और उन तरीकों से इंसान तौबा कर ले जो पहले थे। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ होगा, फौलाए कमल मोमिनीन, ऐसे ही लोग मोमिनों के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को जरूर अजरे अजीम अता करेगा। ऐसे लगता है कि ये आयतें जो थी ना, ये पढ़ने के बाद लगा कि बस मैं तो पक्की मुनाफिक, खत्म, कर ही नहीं सकती अब ये चार काम, उससे भी मुश्किल, बस अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया, अल्लाह ने मुझे मरने के लिए और कुफर के लिए डाल दिया। बहुत सब लोग अल्लाह से बदगुमान होते हैं, तो अल्लाह तआला अगली आयत में बड़े प्यार से कहते हैं, ये आयत तदब्बुर भी हो सकती है इस बारे की, अगर आप इस पे गौर करें तो आप देखेंगे कि मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, लोगो अल्लाह को आखिर क्या पड़ी है कि तुमको खामखा अज़ाब दे, इन शकर तुम व आमन तुम वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने तुम्हें आग में जलने के लिए पैदा नहीं किया, कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को जलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे बैठे हुए थे, कैदियों में से एक औरत का बच्चा उससे दूर हुआ और धूप में खड़ा रोने लगा। थोड़ी देर में माँ बच्चे को ढूंढती भी आई, बावलों की तरह फिर रही थी, बच्चा नहीं मिल रहा, इतनी हांफती कांपती थी कि जिसके बच्चे को देखती उसको दूध पिलाने शुरू होती कि बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा। और जब दूर खड़ा बच्चा धूप में जलता देखा, फौरन उसको जाके सीने से लगाया और उसके मुंह को नहीं, हाथ को नहीं, उसके पाँव के तलवों को चूमने लग गई। अल्लाह के नबी ये मंजर देख रहे थे, आपने सहाबा से कहा, आपकी आंखें नम थी, आपने कहा कि लोग दोस्तों तुमने देखा एक माँ की मोहब्बत को, अगर कल तुम्हें कोई कहे कि इसी औरत ने इस अपने बच्चे को आग जलाकर उसमें फेंक दिया तो तुम मानोगे? अल्लाह के नबी कभी नहीं मानेंगे, ये तो अभी उसके पाँव को नहीं जलता देख सकी। तो फिर आपने फरमाया कि वो जात जिसको अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार है, क्या वो अपने बंदे को आग में जलता देख सकेगा? मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने मुझे और आपको जलने के लिए पैदा नहीं किया, दो काम मैंने और आपने करने हैं, शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र गुजार बने रहो और ईमान की रविश पे रहो, सीधे सीधे रहो, देखिए इसमें कोई लंबे चौड़े काम नहीं, दिल से ग्रेटफुल हो जाओ, शुक्र गुजार हो जाओ कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह के बन के रहे, और ईमान क्या है कि अल्लाह की मान जाओ तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। कोई चीज अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे सामने रख दी, तो यहां आप देखिए इन आयतों को पढ़कर दिल बोझल होता है, तो वही दुआ जो अल्लाह के नबी ने सिखाई कि अल्लाहुम्मा तखिर कल्बी मिनन निफाक वअमली मिनर रिया वलिसानी मिनल कज़िब वअयुनी मिनल खियानती, इस दुआ के साथ से पारा पूरा होता है। हम अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे भी दिलों के खोट कपट निकाल दे और हमारे प्यारों के भी। फिर यहाँ एक छोटी सी बात कह दूं कि इस डिप्रेशन में ना जाइए कि शायद हम सब मुनाफिक हैं, बस दफा निफाक नहीं होता, ईमान की कमजोरी होती है। इस पर एक लेक्चर भी है, निफाक के दर्जे और एक है ईमान के दर्जे, तो अगर आप उन दोनों से फायदा उठाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चलता है, क्योंकि सम टाइम भी शैतान इस ख्याल में डाल देता है कि अब हो तो जहन्नमी गए हो, है ही मुनाफिक पक्के, तो फिर गलत काम कर लो। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमें इससे बचा के रखे, और इस पूरे बारे में हमने जो कुछ पढ़ा सुना उसको अल्लाह ताला हमारे लिए हुज्जत बना दे।